सबके जीवन में समय बहुत कम है। हमें लगता है हमारा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन इस जीवन में किन स्विच दिशा, लेकिन अगर इस जीवन में सही उपयोग जीवन का करना हो तो बहुत थोड़ा समय है, बहुत छोटा जीवन है हमारा। इसीलिए इसमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जितने समय में हम अपना कार्य जितनी जल्दी पूरा कर लें उतना अच्छा है। पिछले कुछ रविवारों से जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पर चर्चा हो रही है। हमने आपको बताया था कि इसमें 11 उत्सव मिले हुए हैं, उनमें से कुछ उत्सवों की चर्चा हम कर चुके हैं, जैसे स्नान यात्रा की चर्चा हो चुकी है, अनवसर की चर्चा हो चुकी है, पहांडी विजय या भगवान का बाहर आना उसकी चर्चा हो चुकी है, और कौन सी हुई है, नेत्रोत्सव, उसके पहले नेत्रोत्सव की चर्चा हो चुकी है। तो 4 हम लोग चर्चा कर चुके, और कोई चर्चा हुई, 4 ही। वैसे इन 11 उत्सवों में ये 11 वो उत्सव हैं जो बड़े प्राचीन काल से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में चले आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है जो आज से करीब 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। उससे पहले ये उत्सव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये इतना महत्वपूर्ण उत्सव बनता जा रहा है कि अगर इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो रथ यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए इस उत्सव की चर्चा भी करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो वे कई कार्य करते हैं, जैसे वे धर्म की स्थापना करते हैं, वे बहुत से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, असुरों का वध करते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कई असुरों को मारा, उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्मियों का नाश किया, साधुओं को आनंद दिया, और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य वो ये करते हैं कि वो उत्सवों को प्रारंभ करते हैं। ऐसे उत्सव जिन्हें आगे आने वाले कई कई पीढ़ियां हजारों लाखों वर्षों तक मना सकें। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, उद्देश्य क्या था, गोवर्धन उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भगवान का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ब्रज में भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भी नहीं सकते, कोई स्वीकार नहीं करते उनकी शक्ति को। जैसे हम लोग देखते हैं इस जगत में लोग कुछ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होती है तो उनका उद्देश्य क्या है, कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। भगवान का उद्देश्य वो नहीं था कि वो सबको दिखाएं कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर नख ऊपर गोवर्धन धारो नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम, ये उद्देश्य नहीं था दिखाना। तो फिर क्या उद्देश्य था, क्यों भगवान ने गोवर्धन उठाया, एक उत्सव प्रारंभ करना चाहते थे। वैसे तो कई उद्देश्य थे, इंद्र के मान को भंग करना इत्यादि, लेकिन एक उद्देश्य उनमें से ये था कि एक उत्सव प्रारंभ हो जिसको आने वाली पीढ़ियां हर वर्ष मना सकें। तो ऐसे ही जब वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कभी कभी लोग ऐसे वाक्यों को सही रूप से नहीं समझते हैं कि कैसे श्री कृष्ण अन्य रूपों में भी आ सकते हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं ताकि भी और लोगों को आने में और पीछे बैठने में कठिनाई ना हो, सो आगे आगे आकर बैठ सकते हैं, जितना आगे आना चाहें आ सकते हैं, केवल इस आसन को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सब क्या है कि श्री कृष्ण वापस आए, हमने तो कहीं नहीं सुना है, और क्या प्रमाण है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को लेकर और अन्य कई लोगों को भगवान घोषित कर देते हैं। तो फिर लोग प्रश्न करते हैं कि देखिए, हम उस संस्था में गए, वहां पर भी लोग अपने स्वामी जी को भगवान कहते हैं, आपकी संस्था में आते हैं तो आप भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं, तो अंतर क्या है, हम क्या समझें। तो उन या ये तो ये मानना चाहिए कि उनके जो स्वामी जी हैं किसी भी संस्था के, वो भी भगवान है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हो सकते हैं, क्योंकि आप ही केवल उनको भगवान कह रहे हैं, हमने तो कभी सुना नहीं। आप में से भी बहुत लोगों ने इस कौन संस्था में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो एक साधु एक संत की तरह सुना होगा। तो फिर कैसे समझना चाहिए, क्या हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु को भावुक तौर पर भगवान मान लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किसी ने कह दिया। नहीं, भगवान को भगवान तब माना जाता है जब शास्त्रों में वर्णन होता है, अन्यथा उनको भगवान नहीं माना जाता। ऐसे भगवान के कोई अवतार नहीं है जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं है। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कार्य करेंगे, स्वयं श्री कृष्ण का भी वर्णन पुराणों में दिया गया है, आदि पुराण इत्यादि में उनका वर्णन दिया गया कि कहां कैसे श्री कृष्ण आएंगे। कभी कभी वर्णन बड़े विस्तार से नहीं होता माता पिता का, जैसे नरसिंहदेव। अब उनके माता पिता का वर्णन नहीं है कि उनके माता कौन होंगे पिता कौन होंगे, इसका कारण यह है कि खंभे को ही उन्होंने माता पिता बना लिया। खंभा फाड़कर जैसे बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, तो नरसिंहदेव खंभे से बाहर आ गए, वही माता हो गई। इसीलिए वर्णन नहीं किया गया कि खंभा उनकी माता होंगी इत्यादि, लेकिन फिर भी शास्त्रों में वर्णन है। तो अब चैतन्य महाप्रभु को कैसे भगवान माने, ये तो केवल भावुक लोग कहते हैं। ऐसा एक स्थान पर एक व्यक्ति ने लिखा कि उनके जो अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु के, वे लोग उनको भगवान मानते हैं। क्यों? उन्होंने थोड़ी बहुत ऐसी कोई कार्य कर दिए जिसको उनके प्रेमी भक्तों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर लिख दिया और अब वो भगवान हो गए। वैसे ये बात सही है, कुछ लोग ऐसे ही भगवान बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये बात सही नहीं है, लेकिन वैसे ये सही है। कोई व्यक्ति जरा सा कोई कार्य कर देता है जो हम नहीं कर पाते, कुछ जादू दिखा देता है, वो भगवान हो जाता है। फिर आगे आने 50 साल 100 साल बाद उसका एक मंदिर हो जाता है और फिर वो भगवान हो गया। कहां से आया, क्या वर्णन है, शास्त्र में कौन सा, कुछ पता नहीं। तो इस व्यक्ति ने लिखा कि चैतन्य महाप्रभु भी ठीक है, एक साधु थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनको भगवान बना दिया। अर्थात उनका कहने का था वो भगवान है नहीं, ये तो उनके अनुयायियों ने प्रेमवश उनकी लीलाओं को देखा और सोचा कि अरे ये तो भगवान है, और उन्होंने लिख दिया बड़ा बड़ा। अब आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो कहती हैं कि ये भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है या नहीं, इसका वर्णन कैसे मिले, इसके पता कैसे चले। तो भगवान जैसे हम बता रहे हैं, भगवान को भगवान माना जाता है, शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए, बड़ा सरल है, कोई और प्रमाण नहीं चाहिए। अगर पुराण कहता है, अगर वेद कहते हैं, अगर उपनिषद कहते हैं, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण और राम को भी तो उसी आधार पर भगवान मानते हैं, नहीं तो क्यों मानेंगे। जिसने रामायण नहीं पढ़ी है वो राम को भगवान कैसे मानेगा, लेकिन जिसने रामायण पढ़ी है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, वो श्री रामचंद्र जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानेगा, कृष्ण को भगवान मानेगा। तो भगवान को भगवान मानने के लिए कई प्रमाण होते हैं, एक होते हैं शास्त्र, दूसरे होते हैं आचार्य। जो शास्त्रों में कहा गया है वही आचार्यों की वाणी में भी होना चाहिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु भगवान है या नहीं, ये कैसे पता चले। कहीं तो लिखा नहीं, भगवद गीता में कहा है भगवान ने, कहीं हम लोग कहते हैं भगवत गीता प्रमाण है, तो बताइए भगवत गीता में कहां श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अब जो बता रहा हूं ये फिर से मैं आऊंगा, मेरा अवतार होगा? कहीं नहीं कहा। भागवत में भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे प्रकट होंगे। तो भगवत गीता में नहीं, भागवत में नहीं, पता कैसे चले चैतन्य महाप्रभु भगवान है? केवल ये इस्कॉन वाले ये गौड़ीय वैष्णव वच चिल्लाते रहते हैं, चैतन्य फोटो लगा देते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कई पुराणों में हुआ है, वेदों में हुआ है, उपनिषदों में हुआ है। इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को भावुक होकर भगवान नहीं मानते हैं कि किसी ने कह दिया वो भगवान है मान लिया। नहीं, कम से कम 25 पुराणों में इसका वर्णन है, वेदों में उपनिषदों में इसका वर्णन है। क्या? चैतन्य महाप्रभु भगवान है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान ने, अब ये गरुड़ पुराण तो कोई चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद नहीं लिखी गई, ये तो स्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं चैतन्य चरितामृत के आधार पर, चैतन्य भागवत, वो तो उनके बाद में लिखा गया है, उसमें तो उन्हें भगवान कहा ही जाएगा, इसलिए उनको भगवान नहीं मानना है। ठीक है, गरुड़ पुराण कब लिखा गया? गरुड़ पुराण कम से कम 5000 साल पहले लिखा गया, तब तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। उसमें कहा गया है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम पूर्ण भविष्यामि, भविष्य में मैं अपने पूर्ण रूप में आऊंगा, अंश नहीं, कला नहीं, अवतार नहीं, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः, एक विशेष युग संध्या में। युग संध्या किसे कहते हैं? हम ये आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप समझिए कि हम किन की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति क्यों नहीं है। युग संध्या मतलब जब एक युग समाप्त होता है दूसरा युग प्रारंभ होता है, तो उस युग के पहले कुछ हजार वर्ष ये संध्या माने जाते हैं। तो युग संध्या विशेषतः अर्थात विशेष युग संध्या में, विशेष मतलब जिसमें श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जिस द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होंगे उस युग की संध्या में, युग संध्या विशेषतः मायापुरे, मायापुर में, नवद्वीपे, जो नवद्वीप में है, भविष्यामि आऊंगा शचीसुतः, माता शची के पुत्र के रूप में है। इतना स्पष्ट लिख दिया है। तो कौन हुए शचीसुत, मायापुर, नवद्वीप? श्री चैतन्य महाप्रभु। कोई कह सकता है शायद चैतन्य महाप्रभु नहीं, कोई और होंगे, यहां पर नाम कहां है उनका? शचीसुत तो ठीक है, हो सकता है कोई शची देवी पहले भी आई हो, 1000-2000 साल पहले। तो अन्य एक स्थान पर दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं उस स्थान पर कि लोकानाम तृण कारणात्, इस लोकों को उद्धार करने के लिए कलियुग में मैं श्री चैतन्य नाम दृक, श्री चैतन्य के नाम से आऊंगा। इतना स्पष्ट भी कर दिया, कहां रहूंगा, संन्यास लूंगा और जगन्नाथपुरी में रहूंगा, ये सब हजारों साल पहले घोषणा की जा चुकी है, और इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। हम भावुक होकर भगवान नहीं मानते हैं किसी को, हम केवल किसी के कहने से किसी को भगवान नहीं मानते हैं। अब उन लोगों को जाकर पूछिए जो अपनी संस्था के स्वामियों को भगवान कहते हैं, कौन से शास्त्र में, कौन से उपनिषद में, कौन से पुराण और वेद में लिखा है कि तुम्हारे स्वामी जी भगवान हैं? बताइए। इसीलिए तुलना नहीं कीजिए चैतन्य महाप्रभु के साथ। क्योंकि हम जब कहते हैं कि वो भगवान हैं तो हम शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं, वेद पुराण उपनिषद के आधार पर बोल रहे हैं। आप बताइए आपके कौन से आधार हैं, और तब हमसे पूछिए कि क्या चैतन्य महाप्रभु भगवान है। दूसरी चीज, महान आचार्यों ने उनको भगवान कहा। शास्त्र में कभी कभी कुछ चीजें दी होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आचार्य उसको समझाते हैं। तो आचार्यों ने उनको कहा, और तो और जैसे बहुत प्रसिद्ध नाम है विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, सन्यास का वर्णन है, और कौन से अवतार ने सन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु का उसमें भी वर्णन है, और उनके अंग का वर्णन है, हेमांग, उनका तपते हुए सोने जैसा उनका शरीर होगा, सन्यास ग्रहण करेंगे, ये सब वर्णन है। केवल अपनी बुद्धि लगाकर उसमें से देखना है, बुद्धि नहीं है तो आचार्यों की वाणी को स्वीकार करना बस। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, आज से करीब 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप मायापुर में जो प्रकट हुए, शास्त्रों की वाणी को सत्य करते हुए उन्होंने एक और उत्सव शुरू किया। तो जैसे हम बता रहे थे कि 11 उत्सव ये प्राचीन उत्सव हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। उन 11 उत्सवों में ये उत्सव नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया, लेकिन वो कृष्ण हैं। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का उत्सव प्रारंभ किया, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस रथ यात्रा महोत्सव में गुंडीचा मंदिर मार्जन का उत्सव प्रारंभ किया। ये चैतन्य महाप्रभु की देन है हम सबको। तो इसलिए आज थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं कि ये उत्सव क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या लाभ है, और कैसे हमें इसे मनाना चाहिए, और फिर आगे रथ यात्रा का वर्णन करेंगे। पहले दिन, जिस दिन रथ यात्रा होती है उसके पहले दिन ये उत्सव मनाया जाता है, और तब तो केवल चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ मनाया था, लेकिन आज हजारों लोग जाकर वहां मनाते हैं। हम लोग इस बार जब गए थे तो हम लोग थोड़ी देर से गए थे, लेकिन इतने लोग वहां पर खड़े रहने की जगह नहीं, सब लोग उस उत्सव को मना रहे हैं। और ये बड़ा ही विशेष उत्सव है, जैसा अन्य उत्सवों में होता है वैसा इस उत्सव में नहीं होता। भगवान की पूजा नहीं की जाती इस उत्सव में, भगवान के प्रसाद को नहीं बांटा जाता इस उत्सव में। उत्सव मतलब यही, भगवान की पूजा हो, भगवान के प्रसाद को बांटा जाए, कथा हो, इस उत्सव में कथा भी नहीं है। बड़ा विचित्र उत्सव है। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो कितना प्रसाद बांटा था, बहुत प्रसाद बांटा था। उसके पहले कथा भी की भगवान ने बताया कर्म का नियम इत्यादि, कथा भी कर दी। इस उत्सव में वो सब नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा विशेष उत्सव है, हम सब के लिए भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला। तो यह है गुंडीचा मार्जन। जैसे हमने आपको बताया था पहले, गुंडीचा देवी महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उन्होंने रथ यात्रा ऐसे कहते हैं कि उनके द्वारा शुरू हुई, इसीलिए उस मंदिर को गुंडीचा मंदिर कहते हैं जहां भगवान जाते हैं। वैसे वो उनका जन्म स्थान भी है या आविर्भाव स्थान है, तो अपने आविर्भाव स्थान को भी देखने जाते हैं भगवान। साल में एक बार 8 दिन रहते हैं वहां पर। तो एक दिन पहले ये उत्सव मनाया जाता है। तो थोड़ा सा इतिहास इसका कि कैसे शुरू हुआ ये उत्सव, और फिर इस उत्सव का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका वर्णन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने बताया, स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 24 वर्ष की छोटी सी आयु में। 24 वर्ष में आजकल तो लोग कहते हैं बच्चे के खेलने की उम्र है, कुछ शायद आज में कल नहीं कहते होंगे, पहले तो कहते थे। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, किस लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, हरे कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए। जैसे आचार्यों ने गाया है कि वही चैतन्य महाप्रभु जो पहले श्री कृष्ण के रूप में आए थे, श्री राधेर भाव एबे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, संन्यास लिया, प्रचार करने लगे और फिर जगन्नाथपुरी में रहे। वृंदावन में नहीं रहे महाप्रभु, वो जगन्नाथपुरी में रहे उस स्थान के महत्व को, उसके प्रकाश को प्रकट करने के लिए। अन्यथा आज हम लोग ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव नहीं मना रहे होते, आज हम लोग ये जगन्नाथ जी की कथा नहीं कर रहे होते, हम लोग अभी भी कृष्ण की कथा कर रहे होते, जो गलत नहीं है। कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण कथा और जगन्नाथ कथा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जगन्नाथपुरी के महत्व को, उसको प्रकाश करने के लिए सारी दुनिया में महाप्रभु वहां पर रहने लगे। वैसे बाहरी कारण था कि उनकी माता ने कहा कि दूर नहीं जाओ, संन्यास ले लिया, घर तो नहीं आ सकते, कम से कम यहीं रहो। लेकिन प्रमुख कारण वो जगन्नाथ जी का गुणगान करवाना चाहते थे सारे जगत में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां रहने लगे, फिर दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए। कई वर्ष चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, हो सकता है यहां से भी निकले होंगे, इसीलिए यहां मंदिर बन रहा है। जहां जहां से चैतन्य महाप्रभु गए हैं, गोकर्ण आए थे ऐसा वर्णन है, तो गोकर्ण के पास ही कारवा रहे, शायद जाते समय यहां से गए होंगे 500 वर्ष पूर्व, पता नहीं यहां जंगल था कि क्या था, कोई नदी बह रही थी, कोई नाला था, हमने सुना थोड़े से पहले नाला था 100 साल पहले 50 साल पहले यहां पे इस स्थान पर जहां आप लोग बैठे हुए हैं, तो 500 साल पहले क्या था पता नहीं, हो सकता है महाप्रभु गए होंगे, क्योंकि जहां जहां से गए वहां पर मंदिर बन गए हैं भगवान के। तो दक्षिण भारत की यात्रा पूरी करके चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा वापस आए। जब उड़ीसा वापस आए तो उड़ीसा के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और वो ये जान चुके थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, ये कोई और नहीं है। आप सोचिए एक एक भक्त के हृदय में कैसा भाव आएगा अगर उसको पता होगा कि भगवान यहीं साक्षात मेरे सामने हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं, उनकी सेवा कर सकता हूं, उनसे मिल सकता हूं। यही भाव राजा प्रताप रुद्र के हृदय में था कि स्वयं श्री कृष्ण यहां पर हैं। और कैसे राजा को पता चला? क्या राजा कोई भावुक व्यक्ति था? नहीं, राजा के जो बड़े बड़े मंत्री थे, जो बड़े विद्वान थे, शास्त्रों को पढ़ चुके थे, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने राजा को दिखलाया, देखिए महाराज ये कोई और नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, और राजा को स्वीकार हुआ। तो आप इस बात से भी प्रमाण लीजिए, राजा वहां के उड़ीसा के राजा थे, कोई भावुक व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं हो सकता कि किसी ने आकर कह दिया कि ये भगवान है, उसने स्वीकार कर लिया। अगर राजा स्वीकार कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे जैसे मूर्खों को प्रश्न नहीं करना चाहिए। राजा प्रताप रुद्र ने स्वीकार कर लिया, और आप सोचिए उस व्यक्ति का भाव, उस भक्त का भाव, जो जानता है उस समय कटक उनकी राजधानी थी, तो कटक में है और उड़ीसा और जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर नहीं है कटक से, तो कटक में बैठकर उनके हृदय में बड़ी तीव्र भावना हो रही है, मुझे महाप्रभु के दर्शन करने। अगर हम लोग यहां, हमें पता हो कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं वृंदावन में, वो घूम रहे हैं वृंदावन में, क्या हम लोग यहां बैठेंगे? हमारी भी इच्छा होगी एक बार जाकर देखा कृष्ण प्रकट हुए। वैसे ऐसा एक बार हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का एक सेवक था, तो जब चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे तो समुद्र में एक दिन अचानक सबको पता चला कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं और रात्रि के समय कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, सारे लोग पागल, जाकर देखना है। तो चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, वो भी पूछने लगा महाप्रभु से, देखिए कृष्ण के साथ रहने के बाद भी व्यक्ति पूछ रहा है मैं कृष्ण को देख कर आऊं कि नहीं, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना? कृष्ण सामने होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कहीं और जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक ने महाप्रभु से पूछा कि मैंने सुना है कि रोज रात को श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, बड़ा प्रकाश दिखाई देता है, क्या मैं जा सकता हूं देखने? महाप्रभु ने कहा चुपचाप बैठ जाओ इधर, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है। बाद में पता चला रात में एक मछुआरा मछली पकड़ने जाता था, उसकी बोट के ऊपर लाइट लगी होती थी और वो जब लहरों से ऊपर नीचे होती थी लोग सोचते थे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं कालिया के ऊपर। तो ऐसी मूर्खता में नहीं, लेकिन अगर सही में मान लीजिए हमें पता चले कि श्री कृष्ण वहां पर आ गए, अचानक आए हैं घूमने आ गए वृंदावन, हम लोग चले जाते हैं, कृष्ण क्यों नहीं आ सकते, तो क्या हम लोग बैठेंगे? तो राजा कटक में है और चैतन्य महाप्रभु इतने निकट पुरी में है, राजा मिलना चाहते हैं। तो राजा ने संदेश भेजा, उनके मंत्री थे वहां पर रामानंद राय, उनको संदेश एक पत्र भेजा उन्होंने कि जाओ ये पत्र लेके जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास, मैं मिलना चाहता हूं। रामानंद राय ने पत्र वापस भेजा दूसरा, महाराज क्षमा चाहता हूं, महाप्रभु नहीं मिलेंगे आपसे। आप सोच सकते हैं एक राजा है उस जगह का, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पूरे राज्य का उड़ीसा के वो राजा थे, लेकिन उनकी नम्रता देखिए, वो चाहते तो आदेश दे सकते थे, चार सैनिकों को भेजे उठाकर लेकर आओ कौन है सन्यासी मेरे सामने, है ना। सिकंदर ने प्रयास किया, जब यहां पर थे सिकंदर तो उन्होंने जब वापस जा रहे थे तो वहां से किसी ने कहा कि इंडिया से भारत से आते समय कोई उपहार ले आओ। क्या उपहार लाऊं तुम्हारे लिए, मैंने सुना भारत में बड़े योगी हैं, हमारे देश में तो योगी नहीं होते, पाश्चात्य जगत के लोग हैं, उनको कहां योगी, सारे भोगी लोग हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा वहां सुना योगी होते हैं, एक आध योगी ले आना जरा हमारे लिए। तो ये चले गए, एक देखा एक योगी है तो बोला जाओ उनको बोलो सिकंदर बुला रहा है या अलेक्जेंडर बुला रहा है। उसने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा। अरे सोचिए दुनिया को जीत के आ रहा है, मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा। तो खैर ये चले गए, कहा देखता हूं कैसे नहीं आता। तो गए उसको बोला चलो मेरे साथ, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो उसने बोला उसने तलवार निकाल ली, बोले चलो नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं, तुम तो मेरे दास के दास हो, अब बताइए। और मतलब बेइज्जती भी करनी हो तो इतनी नीचे नहीं करनी चाहिए किसी की, राजा था वो। तो बोले तुम तो मेरे दास के दास हो, गुलाम के गुलाम हो, तुम्हारे साथ क्या जाना। अब ये सुनकर तो और गुस्सा आ गया, लेकिन ये जानते थे कि ये लोग जो योगी होते हैं थोड़ी बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बातें नहीं करते हैं, कुछ तो होगा। तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, मुझे समझाओ जो तुमने बात कही। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे दास का दास हूं, मैं राजा हूं, मैंने दुनिया को जीत लिया, तुमने कैसे कहा। तो उसने कहा कि देखो तुम क्रोध के वश में हो और क्रोध को मैंने वश में कर लिया है, क्रोध मेरा दास है, तुम क्रोध के दास हो, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मेरे दास के दास हो। और उस समय वो समझ गया, उसने समर्पण किया कि हाँ ये बात तो सही है, मैं क्रोध को तक तो वश में कर नहीं पाया, दुनिया को क्या वश में करूंगा। हिरण्यकश्यपु को भी यही बात समझाई थी प्रहलाद ने, प्रहलाद सोच रहा था मैंने सारी दुनिया को तीनों लोक, क्षमा चाहते हैं, हिरण्यकश्यपु सोच रहा था मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, तीनों लोक मेरे अधीन है। प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद ने कहा आपने अपनी इंद्रियों को तो जीता नहीं है, ये तीनों लोक जीत के लाभ क्या है, ये जो आपने ये गोदास आप बने हुए हैं, ये इंद्रियों के दास कुछ होने वाला नहीं है। अगर जीतना है तो इंद्रियों को जीतिए, जीतना है तो इच्छाओं को जीतिए, ये तीन लोक जीतकर कुछ नहीं मिलने वाला। और सही थे प्रहलाद, 5 साल का बच्चा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, हिरण्यकश्यपु जिसने तीनों लोकों को जीत लिया, भगवान ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन 5 साल के बच्चे की रक्षा भगवान ने की। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि जीतना है तो इंद्रियों को जीतो, और यही बात उस योगी ने अलेक्जेंडर या सिकंदर को समझाई, तुम्हें जीतना है तो अपने क्रोध को जीतो, यू हैव समथिंग अदरवाइज गो आउट, डोंट डिस्टर्ब एवरीवन, सिट डाउन। सो जीतना है तो इंद्रियों को जीतो, अपने अपने क्रोध को वश में करो, अपने अपनी इच्छाओं को, अपने लोभ को, अपने मोह को, अपने मद को वश में करो, वो सच्ची जीत है। अभी जो हम ऐसे बच्चे को कह रहे थे, आपको हम दिखला रहे थे कि व्यक्ति कैसे क्रोध करता है, क्रोध को जीतना चाहिए, इच्छाओं को जीतना चाहिए। इसीलिए योगी को वो ले जा नहीं सके। तो राजा प्रताप रुद्र अगर चाहते तो आदेश दे देते, सैनिकों को भेज देते, उठाकर लेकर आओ उस सन्यासी को, होगा भगवान अपने घर पर, मैं भी राजा हूं। भक्त थे, मना कर दिया। फिर से एक पत्र लिखा उन्होंने, महाराज प्रताप रुद्र ने, उन्होंने पत्र में लिखा कि चैतन्य महाप्रभु को कहिए, महाप्रभु से सब भक्त जाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो भक्तों की सुनेंगे। आप सब मिलकर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको कहिए मुझे मेरे राज्य में कोई रुचि नहीं है, अगर मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं ये राज्य त्याग दूंगा, एक भिक्षुक बन जाऊंगा, कोई लाभ नहीं है इस जीवन का अगर भगवान के दर्शन नहीं है, भक्तों की कृपा नहीं है। और राजा प्रताप रुद्र का जब ये पत्र पढ़ा कि अगर उन्हें महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए तो भिखारी बन जाएंगे, भिक्षुक, त्याग देंगे सब कुछ, और हृदय से लिखा था, धमकी नहीं दी थी। जैसे कभी कभी हम लोग धमकी देते हैं, ये नहीं हुआ तो ये कर दूंगा, उन्होंने कोई धमकी देनी होती तो वो लिखते कि कहो उन्हें मुझे मिले, नहीं तो उठाकर मार दूंगा या कुछ कर दूंगा। नहीं, उन्होंने प्रेम से कहा कि मैं सब कुछ छोड़ने तैयार, अगर दर्शन नहीं होंगे भगवान के तो लाभ क्या है इस जीवन का। और फिर सभी भक्तों ने एक साथ सब मिले और उन्होंने चर्चा की और पत्र पढ़ा कि अरे प्रताप रुद्र तो सब कुछ छोड़ देंगे अगर महाप्रभु नहीं मिले। लेकिन भक्तों ने कहा कि अगर चैतन्य महाप्रभु को जाकर कहा कि मिलो तो भी नहीं मिलेंगे, क्या करना चाहिए। खैर ये बड़ा संवाद है, नित्यानंद प्रभु ने बीच में पढ़कर थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, तो इसको अभी ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग गुंडीचा महार्जन की चर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उस समय वहां रह रहे थे और फिर रथ यात्रा का समय आया। रथ यात्रा के एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो वहां के पूरे पुरी के जो प्रमुख थे, राजा ने जिनको नियुक्त किया था उनको बुलाया, राजा के प्रमुख मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं गुंडीचा मंदिर साफ करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। उन्होंने आदेश नहीं दिया। देखिए एक तरफ राजा अपनी नम्रता दिखा रहा है कि उसने आदेश नहीं दिया, प्रार्थना की महाप्रभु के दर्शन की, और इधर महाप्रभु नम्रता दिखा रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना की राजा से नहीं, राजा के सिपाहियों से, राजा के मंत्री से, राजा के द्वारा नियुक्त पुरी के प्रमुख से कि मैं भगवान का मंदिर साफ करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। और क्यों करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां जाने वाले हैं, तो इसीलिए बड़े हृदय से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं मंदिर साफ करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। और जो प्रमुख थे उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं, आप तो आदेश दीजिए, राजा ने मुझे पहले से कहा हुआ है, इनके मुख से जो निकले उसको पूरा करो, ये तो राजा का आदेश है, इसलिए आप तो केवल आदेश दीजिए क्या करना है। और फिर उसने तुरंत करीब 100 मटके पानी के और 100 झाड़ू, झाड़ू जानते हैं ना आप लोग सब, 100 झाड़ू उन्होंने मंगवा दी कि ये लीजिए और कुछ बताइए और क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस। तो रथ यात्रा के एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर साफ करने पहुंचे अपने सारे भक्तों के साथ, बहुत से अनुयायी थे उनके, और फिर पूरे मंदिर को वो लोग साफ करने लगे, झाड़ू लेकर, पानी लेकर। महाप्रभु स्वयं अपने कपड़े ऐसे उतरिया पहना करते थे, ऊपर का जो कपड़ा होता है, तो महाप्रभु उससे मंदिर को साफ कर रहे थे, उस कपड़े से, ये दिखाने के लिए कि भगवान के मंदिर को साफ करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान का मंदिर ये कोई साधारण स्थान नहीं है, और इसको साफ करने से क्या लाभ होता है ये भी हम इस लीला में सुनेंगे। तो महाप्रभु और उनके सारे भक्त उसको साफ करने लगे। तो झाड़ू ले लेकर पूरे उसके जितने उनमें तिनके थे, उसमें मिट्टी थी, वो सब एक इकट्ठे करने लगे। और जब इकट्ठे हो गए तो फिर उसको उठाकर महाप्रभु गए और बाहर फेंक दिए। फिर सबने भी अपने अपने कपड़ों में उसको उठाया और बाहर फेंक कर आए सब। उसके बाद फिर से झाड़ू लगाई, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे कण रह जाते हैं। तो फिर से साफ सफाई, फिर जल लाया गया, कई मटके जल। बड़ा सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत में है कि जल लेकर आते थे वे लोग मटके मटके भर भर के, और हरी हरी कृष्ण कृष्ण बोला करते थे, कोई और शब्द नहीं, केवल यही बोला करते थे। और कभी कभी लाते लाते एक दूसरे से टकरा जाते थे, मटके टूट जाते थे पानी के, तो फिर नए मटके, ऐसे बहुत सारे मटके आने लगे। वहां पर सरोवर थोड़ा सा दूर है, आप में से जो गए हैं उन्होंने देखा है, थोड़ा दूरी पर है सरोवर, वहां से पानी आने लगा। फिर सरोवर में जगह नहीं बची खड़े होने की, इतने लोग थे, तो लोगों ने कुएं से पानी निकालना शुरू किया, जहां से पानी मिले वहां से लाकर फिर मंदिर को साफ कर रहे हैं। तो पहले भगवान का जो आसन था उसको महाप्रभु ने नीचे उतारा, उसको बड़ी अच्छे से साफ किया, अपने खुद के कपड़े से बड़ा उसको घिस घिस के चमकाया उन्होंने, फिर उसको वापस रख दिया। फिर पूरा मंदिर साफ किया गया, फिर अंदर का जो हॉल और मंदिर के बाहर, मंदिर और मंदिर के बीच में कीर्तन का स्थान है, उसको साफ किया गया। ऐसे पूरा मंदिर उन्होंने साफ किया। उसके बाद बाहर गए, बाहर जहां पुजारियों के रहने के स्थान थे उसको साफ किया, जो द्वार थे उसको साफ किया, बाहर की सड़कों को साफ किया। भाव क्या था चैतन्य महाप्रभु का? भगवान आ रहे हैं तो कितना उस स्थान को साफ होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बड़ा उसको बहुत अच्छी तरह से साफ किया। साफ करते करते उस समय आगे का वर्णन भी है कि कैसे कीर्तन भी महाप्रभु का हुआ, उसको वर्णन करेंगे। तो बहुत साफ कर रहे थे, कोई बात नहीं, जैसे हम कह रहे थे कोई कथा नहीं थी इसमें, भगवान महाप्रभु ने कोई कथा नहीं की, केवल सफाई, झाड़ू और मटके लेकर पानी लेकर सब साफ सफाई हो रहा है, और बहुत चमका दिया उनको। आचार्यों ने समझाया है कि ये जो गुंडीचा मार्जन की लीला है, ये दरअसल हमारे हृदय को साफ करने की लीला है, क्योंकि हमारे हृदय में भी कई जन्मों से वो कूड़ा करकट भरा हुआ है और उसको साफ करने की आवश्यकता है। तो महाप्रभु ये दिखला रहे थे कि अगर हम अपना हृदय अच्छी तरह से साफ करेंगे तब भगवान उसमें विराजमान होंगे। अगर भगवान को विराजमान करना है तो अच्छे से साफ कीजिए, इस जीवन के महत्व को समझिए। जीवन में बहुत कुछ दुख है लेकिन सुख भी है, भक्ति का सुख। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दो सूचनाएं देना चाहता हूं, दो समाचार, एक बड़ा अच्छा है और एक बुरा है। तो बुरा समाचार क्या है? बुरा समाचार ये है कि हम लोग एक दिन मरने वाले हैं, है ना बुरा समाचार, एक दिन मरने वाले हैं। तो दूसरे ने पूछा, भाई अच्छा क्या समाचार है इसके बाद, जब मरने वाले हैं तो उससे अच्छा क्या है समाचार? उसने कहा, अच्छा समाचार ये है कि बाकी दिन हम मरने वाले नहीं हैं, एक दिन मरने वाले हैं ना, बाकी दिन तो मरने वाले नहीं है, उस दिन तो जियो। जियो मतलब वो रिलायंस वाला जियो नहीं है, वो तो मारने के लिए है। उस दिन तो कम, उन दिनों में तो कम से कम अपना जीवन अच्छा बनाओ। लोग हर रोज मरते हैं, हमें जीना चाहिए, मरना तो एक दिन निश्चित है, उसके लिए विषय में क्या सोचना, जीने के विषय में सोचना है। अगर अच्छे से जिएंगे तो मृत्यु भी अच्छी होगी। जीवन कैसे हो हमारा, रोज हम मरे नहीं अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है रोज, ये अच्छी बात है। हम लोग छोटा सा जीवन है, लेकिन उस छोटे से जीवन में हम कितनी सारी कठिनाइयों को, कष्टों को, द्वेषों को लेकर चलते हैं। एक महिला एक बार बस में बैठी हुई थी, एक युवा महिला थी, तो एक दूसरी महिला बस में चढ़ी, थोड़ी खाते पीते घर की थी वो, मतलब समझ गए ना आप लोग, तो खैर, तो वो आई एकदम धम्म करके बैठी, उसके बाद बहुत सारा सामान था, ऐसे वैसे सब पटका, वो सब दूसरी स्त्री थी उसके ऊपर प्रायः सब सामान हो रहा है। तो वो बेचारी कुछ नहीं बोली। तो एक एक बूढ़े व्यक्ति उधर बैठे थे, उन्होंने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा कि अरे ये स्त्री चुपचाप बैठी थी, उसने आकर एक तो जोर से बैठी, जगह उसको धक्का मारा, उसका सारा सामान उसके ऊपर। और ये तो उसने उसको पूछा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, उनको बोलो ये सब क्या ठीक नहीं है। तो उस युवती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उसने कहा छोटी सी यात्रा है मेरी, अभी अगले स्टॉप पर उतर जाना है मुझे, तो अगले स्टॉप पर उतरना है, अब इतनी सी यात्रा में क्या जरूरत है ये सब का, ठीक है क्या जरूरत है झगड़ा करने की, इससे अभी मैं झगड़ा करूं और मुझे तो उतर जाना है। अगर इसके मर्म को हम लोग समझें तो कितना महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी भी यात्रा बड़ी छोटी है, उतरने वाले हैं कभी भी, उसको तो पता था कि वो अगले स्टॉप पर उतरेगी, हमें तो पता नहीं कब भी उतरना पड़ेगा, राइट। इस यात्रा में, अब उस छोटी सी यात्रा में हम लोग एक दूसरे से द्वेष करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे को ऊपर या अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करना, हमें सोचना चाहिए छोटी सी जर्नी है हमारी, छोटी सी यात्रा है, अभी समाप्त हो जाएगी, क्यों चिंता करना उसके लिए, राइट। लेकिन हम लोग यही करते हैं, किसी ने मेरे प्रति कुछ कर दिया, मैं तुम्हें कभी जीवन भर क्षमा नहीं करूं, लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी, मैं तुम्हें जीवन भर क्षमा नहीं करूं, अरे तुम्हारा जीवन है ही कितना क्षमा करने के लिए, जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। तो हमें तो यही सोचना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी यात्रा है, अगर हमसे आपके प्रति कोई अपराध हो गया तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, और अगर आपने हमारे प्रति कोई अपराध किया है तो हमने पहले ही आपको क्षमा कर लिया, चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि यात्रा बड़ी छोटी है। तो इस छोटी यात्रा में हम द्वेषों को, लोभ को, किन किन चीजों को महत्व ज्यादा देते हैं हमें जानना चाहिए। जैसे एक बार एक दर्शन शास्त्र के अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समय का महत्व समझाना चाहते थे, तो एक खाली जार लेकर आए, उन्होंने रख दिया और उन्होंने उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, और उन्होंने पूछा ये भर गया, कहा बिल्कुल भर गया। फिर उन्होंने छोटे छोटे पत्थर लिए, उनको डाला, वो भी आ गए साइड साइड में घुस के कहीं पर, तो उन्होंने कहा अब ये भर गया, बोले हाँ बिल्कुल भर गया। उन्होंने फिर रेत ली, उसको डाला, तो रेत तो कहीं भी घुस जाती, वो भी घुस गई, उन्होंने कहा अब भर गया, बोले हाँ अब तो पक्का भर गया। फिर उन्होंने पानी लिया, वो डाला, पानी तो कहीं भी चला जाता है। तो देखिए जीवन को भरने में पहले जब दिखा कि हाँ बड़े बड़े पत्थर भर गया कुछ नहीं आएगा, फिर छोटे पत्थर हाँ वो भी आ गए, फिर रेत वो भी आ गई, पानी वो भी आ गया। अब उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कुछ समझ में आया, विद्यार्थियों को क्या समझ में आएगा, पत्थर डाले हैं, ये डाले हैं, तो उन्होंने फिर से उसको खाली कर दिया, फिर उन्होंने छोटे पत्थर डाले, फिर उन्होंने रेत डाली, फिर उन्होंने पानी डाला, और उसके बाद वो बड़े पत्थर डालने लगे, बड़े पत्थर उसमें आए नहीं, सही है ना। आप लोग कभी करके देखिएगा, एक जार लेकर उसमें ऐसे प्रयास कीजिए। तो उन्होंने फिर पूछा अपने विद्यार्थियों से, अब समझ में आया, विद्यार्थियों ने बोला समझ में आया होता तो हम लोग वहां खड़े होते, आप यहां बैठे होते। तो उन्होंने समझाया कि ये जो जार है ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हम किस चीज को महत्व देते हैं ये जरूरी जानना चाहिए। बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहला समय उनको देना चाहिए, फिर छोटे छोटे पत्थर जो जरूरी हैं लेकिन इतने जरूरी चीजें नहीं हैं जीवन की, और फिर रेत और पानी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देंगे तो बड़ों के लिए स्थान नहीं होगा। इसी तरह हमारे जीवन में जो जीवन की प्रमुख कार्य हैं उनको स्थान देना चाहिए, हमें स्थान देना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो। लोग समय बर्बाद करते हैं खाने में, पीने में, पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल। तो अब हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज में थे 20-25 साल हो गए, हमें तो पता नहीं आजकल क्या होता है, लेकिन उस समय भी लोग अपना जीवन इसी में बर्बाद करते थे, और आज भी आशा है राइट कॉलेजेस में यही सब जीवन बर्बाद करने की चीज। इसीलिए जीवन के महत्व को, बड़ी चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को पहले समय देना चाहिए, और फिर जो छोटी छोटी चीजें हैं, अन्य चीजें, उनको महत्व दें। तो अब ये जानिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, कौन से हैं वो बड़े पत्थर, कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे हम रोज मरे नहीं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे हम जान लें कि हमारी जो यात्रा है बहुत छोटी है। वैसे इस चीज को बारंबार याद कीजिए, यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, यात्रा बड़ी छोटी है, अगले स्टॉप पर उतर जाना है, क्यों चिंता करना। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं लोग ट्रेन में सीट के लिए झगड़ते हैं, बड़ा कभी कभी तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, तुम कैसे बैठे मेरी सीट पर, तुम कैसे बैठे इत्यादि इत्यादि। अब वही व्यक्ति जो झगड़ा करके बैठता है सीट पे, उसका जब स्टॉप आता है वो उतर जाता है, उसके बाद अगर वो आके बैठे तो दूसरा व्यक्ति बोलता है तुम्हारी सीट नहीं, उसको अगर एक्सटेंड करना है नहीं होता। तो मूल बात की वो ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं अरे तुमने क्या ट्रेन खरीद ली है। वैसे इन झगड़ों को सुनना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुमने क्या ट्रेन खरीद ली है, एक टिकट खरीदा इतना चिल्ला रहे हो, यहां नहीं बैठना वहां नहीं बैठना। तो यही बात है, हमारी जर्नी है, हमें कहीं उतर जाना है, तो क्यों हम इस यात्रा में, इस यात्रा जिसे हम जीवन कहते हैं, क्यों ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए अपना समय बर्बाद करें, क्यों हम इन चीजों में पढ़कर अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करें। बहुमूल्य क्यों, जैसे हमने प्रारंभ में कहा समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आप को सबसे पहले धन्यवाद दिया कि आप सब समय पर आए थे, 1 बजे पूरा जितने यहां पर हैं सब 1 बजे से बैठे थे, है ना, और अगली बार भी बैठेंगे, आप लोग एकदम समय के पक्के हैं। थोड़े बहुत लोग हैं जो कभी कभी उनकी घड़ी खराब हो जाती है तो वो 1:30 बजे आते हैं, उनको लगता है 1 ही बजा, कोई बात नहीं, कम से कम आते तो है मंदिर। मंदिर में आना महत्वपूर्ण है, तो भले आप 1 बजे आए, 1:15 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2 बजे आए, 2:30 बजे आए, 3 बजे आए, 3:30 बजे तक प्रसाद चलता रहता, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आना चाहिए। मंदिर ये वो स्थान है जहां हर चीज आपको शुद्ध करती है। अगर व्यक्ति केवल आकर दर्शन कर लेता है शुद्ध हो जाता है, मंदिर में प्रवेश करता है शुद्ध हो जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये मानना चाहिए कि अगर कोई केवल प्रसाद के लिए भी आया है तो हमारा भाग्य है, क्योंकि हमारी सेवा हो रही है भगवान के प्रति। खैर, लेकिन आप सबसे विनती कि आप सब ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो अगली बार 1 बजे हम यहां बैठेंगे और 2:30 बजे तक कोई होगा नहीं, आप बोलेंगे प्रभु जी आपने कहा था प्रसाद के लिए आना, हम लोग आ गए, ये तो आपकी गलती है, तो समझ जाते। ऐसा नहीं कह रहे हैं, नहीं तो अगली बार से सब खाली होंगे यहां पर और 1 बजे हम बैठे होंगे तो 2-4 ब्रह्मचारी उनको भी जबरदस्ती बैठना पड़ता है, क्योंकि डांट पड़ती है नहीं बैठे तो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की ये दिखलाने के लिए कि जब तक हम अपने हृदय से ये जो दो तरह उन्होंने साफ सफाई की, एक बाहर पहले किया, फिर छोटे छोटे कण जो वो क्रैक्स होते हैं उसमें घुसे होते हैं उसको भी निकाला, तो हमें भी दो तरह से सफाई करनी पड़ेगी। एक तो अपनी बाहरी तौर से हम इंद्रियों को वश में करें, और दूसरा जो हृदय में छोटी छोटी छिपी हुई इच्छाएं हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, छोटी तो नहीं मतलब दिखने में छोटी है, इतनी बड़ी, हरेक को मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है ना। आप लोग तो, आप में से कई लोग नेवी में काम करते हैं, बोलना नहीं चाहिए, वहां तो मान प्रतिष्ठा का बड़ा चलता है ना, इतना होना भी चाहिए थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन व्यक्ति को हृदय से इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऑफिसर बता रहे थे जिस दिन रिटायर हो जाते हैं उसके बाद क्या होता, कहना नहीं चाहिए यहां पर, कुछ ऑफिसर्स होंगे, खैर जिस दिन रिटायर हो जाते कोई पूछता नहीं है, वो सारा मान सम्मान वो इतना था, वो सर सल्यूट और ये वो सारा कुछ चला जाता है, व्यक्ति को बहुत कष्ट होता होगा, हमें तो नहीं पता, अच्छा है भगवान ने हमें ऑफिसर नहीं बनाया, लेकिन हम सोचते हैं कि उनका क्या स्थिति होती होगी। ये हमने मंत्रियों में देखा, ऑफिसर्स में तो नहीं देखा, मंत्रियों में देखा, जब मंत्री होते हैं तो ओ लाइन लगी है, लोग भाग रहे हैं पीछे, सर सर वो नहीं नहीं बाद में आओ कल आओ सर बिजी है। और जिस दिन मंत्री पद से उड़ जाए, जो पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में, तो वही बोलते जरा पीछे खड़े रहो सामने मत आओ, मंत्री आ रहे सही है ना, उनको क्या पुलिस वालों को, जो मंत्री है उसके साथ है वो, तो वही पुलिस वाले जो गन लेकर खड़े रहते थे, ए, ए, हटो हटो मंत्री, वही बोलते हैं जरा पीछे खड़े हो, मंत्री जी आ रहे, नए मंत्री जी आ रहे। बेचारे क्या होती होगी स्थिति सोचिए, जिसको मान प्रतिष्ठा की कामना है, बेचारा हृदय टूट जाता होगा उसका। तो ऐसे ये मान प्रतिष्ठा की भावना भी ये हमारे हृदय में ये कूड़ा करकट है। सबसे अच्छा हृदय वो है जो शुद्ध हो, शुद्ध अर्थात जिस हृदय में भगवान को पाने की कामना हो, केवल वही हृदय शुद्ध है। हृदय की शुद्धता ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए कार्य करें, हृदय की शुद्धता इतनी नहीं है कि हम कोई गलत काम नहीं करें, हृदय की सच्ची शुद्धता ये है कि हम भगवान को लाने का प्रयास करें। और ऐसा प्रयास करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की, गुंडीचा मार्जन की लीला, और उन्होंने सिखलाया कि हमें बड़ी अच्छी तरह से मंदिर का मार्जन करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए अगले रविवार को हम लोग यहाँ पर मंदिर मार्जन की सेवा करने वाले हैं, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है। आप सबके लिए अवसर कि सब लोग मिलकर मंदिर साफ करेंगे। आप सब करना चाहते हैं ना मंदिर साफ? होगा नहीं, होगा नहीं। करना चाहते हैं? अब हो जाएगा थोड़ा। सो अगले रविवार को हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि आप सब जब आए तो ये साथ साथ में मंदिर मार्जन भी हो, तो सारा मंदिर साफ सफाई की आवश्यकता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले महाप्रभु ने किया, तो हम सबको भी उसको करना चाहिए। तो इसको करेंगे, और भी इन उत्सवों में बहुत सारे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगले रविवार को वर्णन करेंगे कि कैसे ये गुंडीचा मार्जन की लीला समाप्त हुई, महाप्रभु ने क्या क्या किया, और फिर आगे जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन कि कैसे। अब हम लोगों ने चार उत्सव वर्णन किए हैं ना, तो उसके बाद एक और उत्सव है, फिर जगन्नाथ जी का रथ आगे निकलता है। तो इसका वर्णन अगले रविवार को, और भी जितने भी बचे अगले रविवार को करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो रथ यात्रा है, इसलिए अगले रविवार पूरा रथ यात्रा का वर्णन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में गुंडीचा मार्जन अर्थात मंदिर मार्जन भी होगा। आप सबको विशेष उपहार मिलेगा, झाड़ू साफ करने के लिए, ताकि मंदिर साफ हो सके, मटकों में पानी, जैसे महाप्रभु ने किया उस लीला का स्मरण करते हुए हम लोग इस मंदिर को बहुत स्थानों पर साफ करेंगे। इसके लिए बताया जाएगा कैसे कैसे होगा। आप सब बड़े उत्साह से आइएगा, अगर हो सके तो एक एक झाड़ू ले आइए साथ में, नहीं तो यहाँ पर उपहार मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतने उत्साह से यहाँ पर आ रहे हैं हर रविवार को, यही उत्साह बनाए रखिए। और क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत वरिष्ठ भक्त यहाँ पर आएंगे, और भी बाहर से भी भक्त आएंगे, तो हम सबको उस उत्सव में थोड़ा सा इस उत्सव की सूचनाएं देना चाहते हैं। वैसे आपको भी सूचना दी जाएगी, लेकिन एक दो चीजें जो महत्वपूर्ण है इस उत्सव में कर रहे हैं उसको हम लोग कहना चाहते हैं, जो हमने पिछले कई सालों में नहीं किया इस उत्सव में उसको कर रहे हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग कि देर हो गई प्रसाद के लिए? नहीं, देर नहीं हुई अभी। ओके, दो नए उत्सव इसमें हम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर हमने सुना, यू कैन स्विच दिस ऑफ, ज्यादातर हमने सुना कि पूरे भारत में कुछ धन की कमी हो गई पिछले एक डेढ़ महीने में। कुछ 8 नवंबर को ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया कि सब लोग हाय हाय, जो करना चाहते थे हाय, जो काले काले थे उन्होंने हाय हाय किया, ऐसा हमने सुना है। कुछ जिनके पास गोरे गोरे नोट थे उन्होंने कुछ चिंता नहीं की, तो उसके कारण सब जगह थोड़ा मंदिरों में भी इफेक्ट हो गया, पैसा ज्यादा नहीं आया। लेकिन हम लोग एक उत्सव और बढ़ा रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो 8 तारीख को और 9 तारीख को रथ यात्रा है। 8 तारीख को रथ यात्रा, 9 को उत्सव, ये तो आप सब जानते हैं, और इसमें भारी संख्या में आपको आना ही है। उसके एक दिन पहले 7 तारीख की रात को हम लोग यहां पर भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नौका विहार उत्सव कर रहे हैं। इतने धीरे हरि बोल बोलेंगे तो नौका आगे ही नहीं बढ़ने वाली, तो थोड़े जोर से हरि बोल कहिए नौका विहार उत्सव के लिए। आज तक यहाँ किया नहीं और अब पहली बार कर रहे हैं, और अगर सफल हुआ तो हर रथ यात्रा के पहले दिन ये नौका विहार होगा। तो इसमें हम लोग बाहर जो हमारा गार्डन है जिसमें आप लोग प्रसाद लेते हैं, वहां पर एक थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए, एक छोटा सा पॉन्ड बनाने वाले हैं, तालाब बना रहे हैं पानी का, कृत्रिम, गड्ढा नहीं खोदेंगे, वो अगले दिन गायब हो जाएगा। तो जादू आप लोग एक दिन देखेंगे अगले दिन गायब। तो तालाब बना रहे हैं और उसको फूलों से सजाया जाएगा। ये शाम को 6 बजे उत्सव प्रारंभ होगा, 7 तारीख को शाम को 6 बजे। तो वहां पर कीर्तन होगा, स्लाइड्स पर कीर्तन दिखाया जाएगा, कीर्तन भजन और भगवान राधा और कृष्ण, तो बहुत सुंदर विग्रह हैं राधा और कृष्ण के, जिन्हें राधा गोविंद जी नाम दिया गया है, वो बेलगाम से आएंगे और उनके लिए एक विशेष नाव तैयार की गई है। तो वो नाव भी उस दिन, उससे पहले ही आ जाएगी, तो उस नाव में उनको बिठाया जाएगा और फिर उनको पूरा पानी में घुमाया जाएगा। तो ये बड़ा सुंदर उत्सव होगा उस, और बीच बीच में भोग लगेगा भगवान को और फूलों की वर्षा होगी। ये सब अभी योजनाएं बन रही हैं, अभी पूरा नहीं हो पाया है, कितना हो पाएगा ये तो जगन्नाथ जी जाने, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप सब 7 तारीख के लिए ध्यान रखिए कि रात को शाम को 6 बजे यहां पर ये बहुत सुंदर उत्सव होगा भगवान का, बड़ा मधुर उत्सव है। जैसे हम लोग झूलन यात्रा करते हैं ऐसे ही भगवान को नौका विहार, सबको अवसर भी मिलेगा भगवान को नौका में घुमाने का। तो इस उत्सव में आप सब आइए, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं जो दूर से आते हैं जैसे नेवल बेस अर्गा वगैरह से, वहां से कुछ व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त आ जाएं। तो ये एक उत्सव हमने रथ यात्रा महोत्सव में जोड़ दिया है इस वर्ष, तो ये उत्सव आप सब एक दिन पहले मनाने के लिए आइए। दूसरा एक उत्सव जोड़ा है जो हमने पहले कभी रथ यात्रा में नहीं किया, इस वर्ष से प्रारंभ कर रहे हैं, और वो है कि इस रथ यात्रा में जब रथ चलेगा भगवान का, तो उस रथ के आगे थोड़ा सा दूरी पर एक और छोटा रथ चलेगा। तो एक ही रथ यात्रा में 2 रथ होंगे, एक बड़ा जगन्नाथ जी बैठे होंगे, दूसरा छोटा, और इस छोटे रथ को केवल बच्चे चलाएंगे। तो बच्चों की रथ यात्रा होगी, उसमें किसी बड़े को अनुमति नहीं होगी वहां जाने की, अंदर एरिया मार्क कर दिया जाएगा। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 फुट का रथ होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, ताकि खींच सकें 3-4 फुट का, और उस रथ को बच्चे खींचेंगे, आरती बच्चे करेंगे उसमें, कीर्तन बच्चे करेंगे, वो सब उनकी रथ यात्रा होगी। तो वो आगे आगे चलेगा। तो इसके लिए आपके घर में आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हों उनको लेकर आ जाइएगा। हाँ, तो यहां पर अभी अनाउंसमेंट भी होगा, नाम भी लिए जाएंगे, तो जितने भी बच्चे इसमें आ सके, लेकिन ये पूरे बच्चों के लिए होगा। उसमें आरती जगह जगह पे खड़े होकर आरती करेंगे, लेकिन वो बच्चे ही करेंगे, खींचेंगे बच्चे उसको, बड़ों को अनुमति नहीं होगी, और कीर्तन भी उसमें बच्चे ही करेंगे, और प्रसाद भी बच्चे ही बांटेंगे उसमें। वो एक बच्चों की रथ यात्रा है पूरी। तो और उसमें एक ये भी रखा है कि जितने भी बच्चे उसमें भाग लेंगे उनको उसी दिन रात को वहां पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि भाग लिया इन्होंने रथ यात्रा में बच्चों की। और 5 बच्चों को वहां, आपने स्टेज देखा है, बहुत बड़ा स्टेज है, 5 बच्चों को स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार दिया जाएगा, उन 5 बच्चों को जिन्होंने सबसे अच्छी ड्रेस पहनी होगी। ड्रेस मतलब ट्रेडिशनल, नहीं कि वो जीन्स टी शर्ट पहनकर आ गए बोले पर उपहार दीजिए मेरी नई टी शर्ट है। तो तो कोई बच्चा कृष्ण बने, कोई राधा बने, कोई रामचंद्र जी बने, सब आ जाएं रथ यात्रा में, सबके लिए अनुमति है। तो उनमें से 5 बच्चों को चुनेंगे और उन बच्चों को वहां पर बुलाकर प्राइज दिया जाएगा। तो हो सकता है कोई कृष्ण बना होगा, कोई मीरा बनी होगी, कोई राधा रानी बनी होगी, कोई सीता देवी, कोई रावण, कोई बात नहीं, बन सकते हैं, कोई नरसिंह देव इत्यादि, तो जो भी बच्चों ने ऐसे किया होगा उनमें से पांच ऐसे बच्चे चुनेंगे जिनके बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स होंगे और उनको फिर वहां बुलाकर हम लोग प्राइज देंगे। तो इसीलिए ये एक छोटी सी प्रतियोगिता भी है और बच्चों के लिए एक अवसर भी है कि उनकी खुद की रथ यात्रा होगी, कोई उसमें दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें। हाँ जी, बच्चे कितने साल के हों? हाँ, ये एक है, इतने तक तो होने चाहिए। अब आप साल देख लीजिए रथ खींचने के लिए, छोटे बड़े सब चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी पैदा हुए हों उनको नहीं, मतलब संभालने में तकलीफ हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है, मतलब कम से कम इतने तो हों। हाँ इतने, कितने कितने साल के होते हैं इतने बच्चे? हाँ माता जी को पता होगा, पांच साल। ओके, ये खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, इसके जितने होने चाहिए। पांच साल के हो आप? वेरी गुड, पांच साल। ओके, सो पांच साल से ऊपर हो, क्योंकि छोटे होंगे तो माताओं को संभालना पड़ेगा उनके, तो माताएं भी आए, माता पिता भी साथ में आए, लेकिन वो थोड़ा रस्सी के बाहर रहेंगे, और ताकि बीच में बच्चा रोने लगे पानी चाहिए तो फिर हम लोग एक बार यात्रा ले गए थे एक बच्चों की, बड़ा आनंद आ रहा था, अचानक रात में बच्चा रोने लगा, मम्मी चाहिए, मम्मी थी नहीं उसकी, हम लोग कहां से लाते तो लेकिन इस रथ यात्रा में तो मम्मी पापा साथ में ही रहे, जैसे ही बच्चा रोए तो रहेंगे, लेकिन और भी व्यवस्था उनको कर रहे हैं, रस्ते में उनको पानी वानी खिलाना, और अगर थक जाएंगे तो गाड़ियों में बिठा सकते हैं उनको, और उनकी यात्रा इतनी लंबी नहीं करेंगे, जल्दी खत्म कर देंगे, देखकर कैसा उत्साह है। तो ये दो उत्सव नए इस रथ यात्रा में कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि ये रथ यात्रा में ये दोनों उत्सव बड़े सफल हों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है रथ यात्रा के विषय में? क्योंकि अब रथ यात्रा महोत्सव आ रहा है तो हमारे रथ यात्रा विषय में अगर किसी के कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो आप में से कोई बोल सकते हैं, एक पांच मिनट के लिए रथ यात्रा मीटिंग हो सकती है। किसी का कोई सुझाव, पिछली बार रथ यात्रा देखी थी उसमें कोई कमी रह गई हो, कुछ अच्छा करना हो, या आप लोग कुछ भी रथ यात्रा के विषय में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कोई भी भक्त, सबको अनुमति। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, समय रथ यात्रा का, रथ यात्रा 3 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी, 3:30 बजे रथ निकलेगा यहीं से बाहर से, और 6:30-7 बजे तक हम लोग वहां पहुंचेंगे, और फिर वहां पर प्रोग्राम चलेगा रात तक 9-10 बजे तक। यस, और अगले दिन फिर प्रोग्राम होगा, और उस दिन सुबह रात को जो भक्त आ रहे हैं 7 तारीख को, अगर वे लोग यहां रुकना चाहें तो उनके रुकने की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि सुबह का प्रोग्राम यहां सन्यासियों के प्रवचन होंगे उसको आप लोग सुन सकेंगे, तो वो भी व्यवस्था कर सकेंगे, लेकिन पहले से अगर आप बता दें तो। जैसे आप लोग दूर से आ रहे हैं, रात को वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी व्यवस्था करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं रथ यात्रा के विषय में? नहीं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमी रही हो उसको अच्छा करना है? अच्छा, तो इतना कीजिएगा कि जितने बच्चे हो सकें, आपके हों आसपास के हों कोई चिंता नहीं, सबको इस रथ यात्रा, ये जो बच्चों की रथ यात्रा है उसको सफल बनाने का प्रयास कीजिए। तो जितने हो सकें, चाहे नेवल बेस से आए, आमदल्ली से आए, कारवार से आए, देवबाग से आए, काजूबाग से, कोई भी बाग से आए, या बहुत सारे बाग है ना। हाँ ठीक है, तो अभी कुछ सूचनाएं आपको दी जाएंगी, और सूचनाओं के बाद फिर आप सब प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे सूचना देने वाले कहां गए? किसी को तो लेट होना चाहिए ना, सब समय पर होगा तो अच्छा नहीं है। माइक दीजिए इनको।